अब अगली आयत जो आ रही है वो आ रही है कि जब निकाह हुआ और रुखसती नहीं हुई, लेकिन मेहर मुकर्रर हुआ है। पिछली आयत में क्या था? मेहर मुकर्रर नहीं हुआ था, तब भी कुछ देना है। अब क्या है? मेहर मुकर्रर हुआ हुआ है। अब क्या होगा इस सिनेरियो में कि आधा दिया जाएगा? तो देखते हैं आयत को। वा इन तलक तुमुहुन्ना, और अगर तुम तलाक दो उनको, मिन कबल, इससे पहले, अन के, तमस्सुहुन्ना, तुमने हाथ लगाया उनको, यानी रुखसती से पहले अगर तुमने उनको तलाक दे दी, तो अब क्या है? वकद फरत तुम लहुन्ना फरीदा, और तहकीक मुकर्रर कर दिया था तुमने उनके लिए मेहर को, मेहर उनका तुमने मुकर्रर किया हुआ, फिक्स हुआ हुआ। फनिस्फु मा फरत तुम, तो आधा है जो मुकर्रर किया तुमने मेहर, हालांकि अभी रुखसती नहीं हुई, हाफ फिर भी देना होगा। मसलन किसी ने $10,000 मेहर रखा हुआ था, लेकिन तलाक हो गई है, तो अब मेहर हाफ देना पड़ेगा, यानी 5,000 देना पड़ेगा उसको। अब लोग मेहर बड़े बड़े क्यों रखते हैं? अक्सर इसलिए रखते हैं कि अगर तलाक हो गई तो फिर मेहर देना पड़ेगा, हालांकि आपको पता है मेहर तो शादी के वक्त ही देना पड़ता है, उसको हाथ लगाने से पहले मेहर अदा कर देना चाहिए। लेकिन हमने क्या समझा होता है? इसलिए हम ये समझते हैं क्योंकि जो तलाक से पहले, यानी अगर सारी जिंदगी भी नहीं दिया, तो अब जब भेजने लगा, तलाक देने लगा, तब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ये फर्ज है। अगर ऐसे ही है, अगर ना दे के मरा, तो उसके ऊपर, यानी उस विरासत में से मेहर अदा किया जाएगा, पहले कर्जे के तौर पे समझ लें उसके ऊपर, तो इसलिए उस वक्त दिया जाता है, क्योंकि हमने सारी जिंदगी तो दिया ही नहीं होता। हालांकि देना किस वक्त चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम क्या है उसको छूने से पहले? इल्ला, अच्छा अब क्या है, निस्फ दे दिया जाए, इल्ला एक्सेप्शनल केस कोई हो सकता है, और वो एक्सेप्शनल केस है अन याफूना, कि वो औरतें माफ कर दें। वो औरत कहे कि ठीक है, मैं जब इसके घर रुखसत ही नहीं हुई, मैं क्यों लूं इसके पैसे, तो मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मैंने ये आधा भी नहीं लेना, तो वो कह दे तो ठीक है फिर। औ याफुआ, माफ कर दे कौन, अल्लदी बियदिही उकदतुन निकाह, वो जिसके हाथ में गिरा है निकाह की, जिसके हाथ में गिरा है निकाह की मतलब क्या, यानी वो चाहे तो निकाह तोड़े, वो चाहे तो निकाह करे। वो कौन होता है? वो दूल्हा होता है, जो लड़का है उसके हाथ में। क्यों कही गई? देखे ना आप, जिस वक्त निकाह होने लगता है तो उस वक्त कबूल करता है वो औरत को, वो कहता है कि हाँ मैंने इसको लिया अपने निकाह के अंदर, तभी निकाह होता है ना, इसलिए उसके हाथ में है कि वो उसने निकाह की गिरा बांधी, और इस गिरा को खोलना भी उसके हाथ में है, इसलिए कि तलाक औरत के हाथ में नहीं होती, आदमी के हाथ में होती, वो जब चाहे इस गिरा को खोल सकता है। इसलिए यहां तो ये नहीं कहा गया शौहर के, जौज के हाथ वो, बल्कि कहा गया जिसके हाथ में गिरा निकाह की, यानी आदमी, आदमी को ये चाहिए कि फिर वो क्या करे, या वो माफ कर दे। वो कैसे माफ कर दे? क्योंकि उस वक्त में क्या होता था, अक्सर जब निकाह होता था ना, उसी वक्त ही दे दिया जाता था मेहर, ठीक है? अब पूरा का पूरा मेहर दे दिया, अब ये औरत कितना रख सकती है? हाफ रख सकती है, हाफ उसको वापस लौटाना है, तो वो माफी कर दे कि नहीं तुम पूरा ही रख दो। या अगर अभी मेहर नहीं दिया और हाफ तो देना है ना इसको, लेकिन वो कहे कि नहीं मैं हाफ क्या, मैं चलो तुम पूरा ही ले लो, मैं तुम्हें पूरा ही दे देता। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई ऐसे ऐसे हुस्ने मामला के बारे में इतनी प्यारी एक हदीस है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, बड़ी खूबसूरत, कि बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो खुले दिल वाला है, सखी है, यानी सखी है वो, जब वो बेचता है तो उसमें सखावत करता है, और मुरव्वत वाला है, खुले दिल वाला है, जब किसी से मामला करता है तो तब भी खुले दिल से करता है। तो उसने मामला जो है ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदे के लिए दुआ की है कि अल्लाह उसके ऊपर रहम करे जो इतना अच्छा है कि जब वो बेचता भी है तो खुले दिल के साथ, जब किसी से मामला भी करता है तो खुले दिल के साथ करता है। और आज क्या है, आज वो औरत कहती है कि जो निसफ तो छोड़ो, पूरा का पूरा दो और उससे ऊपर भी दो। और आदमी वाले कहते हैं कि आधा भी हमने क्यों देना, वो जो हमने चीजें दी हुई थी वो भी वापस करो। ऐसी छीना झपटी होती है कि यानी जिसको नहीं भी जरूरत है, ये नहीं होती कि कोई गरीब होता है तो इसलिए करता है, बस दूसरे से ग्राह्य इतना होता है, दूसरे से इतनी नफरत होती है, इसको क्यों मिले। लोग वकीलों को दे देंगे कि उनके ऊपर पैसा इतना बहा देंगे, अदालतों के चक्कर लगा लेंगे, अदालतों की फीस दे देंगे, लेकिन कहते हैं दूसरे के पास ना कुछ जाए। वो उनको गवारा होता है कि गैर मुस्लिम वकीलों को भी मिल जाए लेकिन मेरी एक्स वाइफ को ना मिले, या एक्स हस्बैंड को मैं क्यों माफ कर दूं। और फरमाया वह अन तअफू अक़रबु लित्तक्वा। गोल्डन रूल्स ये दो दिए गए, गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ, और ये इसमें तो है ही है, इस मामले में। इसके अलावा भी आप पूरी जिंदगी में जिधर ये रूल्स दो अप्लाई कर लेंगे ना, आपकी जिंदगी हसीन हो जाएगी, जिस रिश्ते में भी कर लें आप शादी में भी हैं तब भी ये रिश्ते, उसमें ये दो रूल्स अप्लाई करें, आपकी शादी खूबसूरत हो जाएगी। आप बहन भाइयों के साथ, आप रिश्तेदारों के साथ, और अगर कोई किसी को तलाक देता है उसके साथ भी करेगा। बाद में कभी भी जिंदगी में सामना होगा दूसरे से तो दूसरा रिस्पेक्ट से ही देखेगा, क्योंकि इंसान जो है ना कभी किसी के सामने आ जाता है। वो कहते हैं ना दुनिया कितनी छोटी है कि सामने कोई 10 साल पहले का कहीं किसी के साथ ताल्लुक खत्म हुआ हुआ, किसी दिन वो एकदम अचानक सामने आ जाता है। तो वह अंताफु अकरबुल तकवा, तुम माफ करो, ये तकवा के ज्यादा करीब है। कौन माफ करे, किसको कहा जा रहा है? तुम दोनों में से कोई भी माफ कर दे, यानी वो औरत को कहा जा रहा है अगर तुम माफ कर दो कि मैंने निस्फ भी नहीं लेना, वो आदमी कहता है कि नहीं तू पूरा ही ले ले। तुम दोनों में से जो माफ कर देगा ना वो तकवा के ज्यादा करीब होगा, वो ज्यादा बेहतर है। तकवा वाले को तो अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है ना। देखें शादी के शुरू में या शादी के लिए जब रिश्ता डाला जाता है या उस वक्त, तो बड़ा रोमांटिक बातें होती हैं और बड़ी होती हैं, वो तो बड़ा आसान है, उस वक्त तो इंसान के अपने जज्बात होते हैं। लेकिन इस वक्त में दूसरे के साथ अच्छा होना, भलाई करना और माफ कर देना, ये फिर सिर्फ वो कर सकता है जिसमें तकवा ज्यादा हो, तकवा के करीब तरह। तकवा क्या चीज होती है? अल्लाह ताला के डर से, गुनाह से बच जाना और अल्लाह ताला को राजी करने के लिए नेकी करना। तो ये माफ कर देना, अब ये वुसअत कल्बी है ना, कि इंसान का दिल इतना बड़ा हो, समंदर के बराबर होना चाहिए दिल, कि जो ऐसी जगह पे भी माफ कर दे कि जिस औरत के साथ अब मैंने शादी नहीं करनी, मैं इसको क्यों दूं, लेकिन फिर मैंने माफ कर दिया कि ठीक है तुम पूरा ही ले ले, और उसको कोई हर्ट नहीं किया, उसको कोई तकलीफ नहीं दी। फरमाया वला तंसवुल फदला बहिना को, ये सेकंड गोल्डन रूल है। पहला है माफ कर देना, किसी रिश्ते में भी आप इसको रखें, ये ज्यादा करीब है तकवा के। हम मुत्तकी परहेजगार होने की ख्वाहिश भी करते हैं और हम चाहते भी हैं कि तकवा हमारे अंदर किसी तरह आ जाए, हम भी वो जो मुत्तकीन की इतनी प्यारी खसूसियात, इतनी प्यारी सिफात, इतना प्यारा है उनका रिवॉर्ड बताया गया ना, जन्नत ही बताई गई वो मुत्तकीन के लिए, तो हमें भी ये ऐसी मिल जाए। और पता नहीं हम मुत्तकी हैं कि नहीं, तो देख लें यहाँ पे कितना माफ करते हैं आप लोगों को, तो माफ कर दो, ये ज्यादा करीब है तकवा के। कितना माफ करते हैं बताएं, किसी से कोई गलती हो जाए, किसी के साथ बन नहीं सकी, किसी साथ कोई भी रंजिश हो जाए, क्या भुलाते हैं उसको, दरगुजर करते हैं कभी, जाने देते हैं कभी? यहां पे तो हक देने की बात है कि अपना भी हक उसको दे दिया, ये अब उसका हक नहीं बनता, लेकिन निस्फ बनता था ना उसका हक, बाकी निस्फ भी दे दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो माल, तो इंसान इतना बखील होता है माल को हाथ से नहीं जाने देता, मगर जहां पे माल नहीं भी जा रहा होता कितना हम माफ करते हैं बताएं। इसके अलावा भी, क्योंकि ये गोल्डन रूल तो हर एक चीज के लिए, इसके लिए तो है ही, आम जिंदगी का सुनहरी असूल, कि हम कभी किसी के साथ, चाहे उसकी ही गलती हो, लेकिन हम जाने दें, हम भूल जाएं, नहीं, हम उसको वो नहीं, जख्म जब होता है तो जख्म को आप क्या करते हैं, जख्म कब हील होता है आप देखते हैं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जख्म को कुरेदते हैं, फिर छील लेते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उसके ऊपर छिलका आने लगता है, फिर उसको छील लेते हैं, फिर दर्द होती है, ऐसे ही होता है ना। जख्म भरता कब है, जिस वक्त आप उसको टच नहीं करते, आप उसको छोड़ देते हैं ऐसे, तो वो भर जाता है एक दिन। लेकिन जब हम बार बार उन्हीं बातों, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये हो गया वो हो गया, वो ही सोचे सोचते रहते हैं, देखो ये मेरे साथ, जब यही करते रहेंगे तो मुझे बताएं आप भूलेंगे कब, आप जाने कैसे देंगे, आप माफ कैसे कर सकेंगे, तब तो माफ हो ही नहीं सकता ना, किसी रिश्ते में भी माफ नहीं हो सकता। जब उन्हीं सोचों को हम बार बार सोचते रहे, दिन रात वो याद करते रहे, कूड़ते रहे, फिर तो डिप्रेशन ही होगा, माफ तो नहीं हो सकता, या उसके तज़करे ही करते रहे तो हम जख्म को छीलते ही जाते हैं। माफ करना ना बहुत बड़े लोगों का काम होता है, बहुत बड़े लोगों का, ये छोटे दिलों वालों का काम नहीं होता। छोटे दिल वाले पता है कैसे होते हैं, आप ये छोटा सा प्याला है ना, जिसका दिल इतना होगा, तो छोटे से प्याले में आप पानी डालें, उसके अंदर फिर कोई पत्थर फेंके तो क्या होता है, वो पानी स्प्लैश करके बाहर गिरेगा ना, इतना बड़ा तूफान उसके अंदर आ जाता है, वो छोटा दिल होता है। और एक दिल होता है जो समंदर के बराबर होता है, दरियाओं के बराबर होता है, उसमें आप एक पत्थर भी डालेंगे कुछ नहीं होता, हल्की सी कोई वेव आएगी लेकिन वो उछल के नहीं पड़ जाएगा। तो यही दिलों के भी हाल है, जब दिल इतने बड़े होते हैं ना समंदरों के बराबर, तो वही दिल फिर माफ करते हैं, और जब दिल इतने से होते हैं और अक्सर इतने ही छोटे होते हैं, फिर उनमें बड़े तूफान आते हैं, वे बहुत स्प्लैश होता है, फिर जुबानें भी नहीं रुकती, फिर रवैये भी नहीं कभी सही होते, हिल जाता है वो सारा का सारा पानी। अंताफु अकराबुल तकवा, मुत्तकी बनना है तो माफ करना सीखना होगा, अपने आप को इसके लिए मनाना होगा, असल में दूसरे को मनाना की जरूरत नहीं होती, किसी को माफ करने के लिए अपने आप को मनाना होता है, कि अपना दिल मान जाए कि मैं माफ कर दूं। वो माफी मांगे नहीं मांगे या क्या है, या नहीं, नहीं उसको तो एहसास नहीं हुआ, पहले वो माफी मांगे, पहले मेरे पैरों में पड़े तब मैं माफ करूंगी, उसने तो नहीं सॉरी कहा। तो बड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसे माफ करते हैं कि कोई कहे भी नहीं तो माफ कर देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल सबसे बड़े इंसान की देख लें, एक नहीं बेशुमार जिंदगी में मिसालें ऐसी मिलेंगी जहां पे कैसे कैसे माफ किया, बताएं कैसे कैसे माफ किया, मुझे कोई बताने की जरूरत है, मुझे कोई मिसालें देने की जरूरत है, इसीलिए मैं कह रही हूँ जो बड़े लोग होते हैं ना ये उनके काम होते हैं, तो जो छोटे छोटे हमारे जैसे होते हैं ना वो बस उड़ते ही रहते हैं उसके ऊपर, सड़ते ही रहते हैं, अपने आप को भी जलाते हैं, और ऐसे ही बस उनकी जिंदगी से खत्म ही नहीं होती वो बातें, वो 10 साल पुरानी भी हो जाएंगी ना, वो उस जख्म को कुरेदते रहेंगे कुरेदते रहेंगे, उसने फलाने वक्त में ऐसा कर दिया था, और ये वो कोई भाई का बेटा था, बहन का बेटा था, उनके साथ भी ताल्लुकात खत्म, उनके साथ भी रंजिशें शुरू, उनके साथ भी नफरतें शुरू, कता ताल्लुक फलां। हम तो छोटी चीजों पे नहीं माफ करते, ये तो बड़ी बातें हैं, ये तो शादियों की बातें तो बड़ी हैं, जहां पे बच्ची को किसी की तलाक हो जाए इस तरह, वहां माफ करना तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसको भी कहा अकरबुद्दीन तकवा, हम तो छोटी छोटी जो चीजों पे नहीं माफ करते, बड़ी पे क्या माफ करेंगे, कोई करके तो देखे कोई गलती फिर देखे, ये हमारे हाल है। लेकिन हम सब चाहते हैं अल्लाह हमें माफ कर दे, हम किसी को नहीं माफ करते। यहाँ पे मेरी दुआ है अल्लाह हमें इतने बड़े दिल दे दे कि हम माफ कर दिया करें, कोई हमसे बुरा भी करे तो हम माफ कर दे, अल्लाह हमें ऐसे हौसले दे दे, ऐसे हमें जर्फ दे दे या अल्लाह। वला तंसवुल फदला बैनकुम, तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर फजल करना ना भूलो। क्या मतलब होता है फजल करने का, हक से ज्यादा देना, हक से वो दूसरे का हक नहीं बनता लेकिन हक से ज्यादा देना, एहसान करना जिसको आप कह सकते हैं कि एहसान, तो तुम फजल करना ना भूलो, यानी एहसान करना ना भूलो दूसरे के साथ, यानी कभी तो वो वक्त आया होगा, एक इसमें पिछले वक्त का भी है और एक आगे का भी है, ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसको समझे, कभी तो वो वक्त आया होगा जिसकी जिसमें दूसरे के साथ कोई अच्छा मामला हुआ होगा, जिसमें किसी ने आपके साथ भलाई की होगी। अब यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कभी तो कोई अच्छे दिन आए होंगे, अच्छी तरह बोले होंगे, जिस वक्त निकाह हुआ होगा उस वक्त कितनी खुशी की होगी, कोई रोमांटिक बात बोली होगी, कोई कोई अच्छाई की होगी, कोई उसकी तरफ से कोई तोहफा मिला होगा, कोई कुछ कुछ तो हुआ होगा। ऐसा नहीं होता कि कभी किसी से कोई अच्छाई ना मिले। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरे से अगर 10 में से 7 बुराइयां मिलती हैं तो 3 अच्छाइयां हमें नजर नहीं आती, हमें वो 7 बुराइयां ही नजर आती रहती हैं कि नहीं वो देखो उसने वो तो बुरा किया था ना, वो 3 अच्छाइयां भूल जाती हैं हमें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या ना भूलो, एहसान को ना भूलो। हम किस चीज को भूलते हैं? इसी को तो भूलते हैं, बुराई को नहीं भूलते, हम एहसान को भूलते हैं। और जबकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, एहसान को ना भूलो। तो अल्लाह ताला ने जो फरमाया वला तंसवुल फतला बैनकुम, तो पिछली बातें, अब अच्छा कपल्स में भी क्या होता है, उनमें भी कभी ना कभी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी बातें याद रखनी चाहिए जो एहसान की है, जो उनके साथ उन्होंने जो भलाई की भी है। इसी तरह रिश्तों में देख लें, उनमें भी ये याद रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपस में कभी अच्छे टाइम, मसलन बहन भाइयों का रिश्ता है तो कोई अच्छा टाइम तो गुजरा होगा ना, कोई अच्छी बातें तो होंगी, कोई यादें तो होगी ना, उनको याद रखो। और फ्यूचर के लिए क्या है, फ्यूचर के लिए ये मतलब है कि आप आगे एहसान करना ना भूलो, यानी आगे फ्यूचर में एक दूसरे के साथ एहसान की रविश रखो। यानी देना तो आधा था, तुम पूरा दे दो, ये फजल है, किसी ने वाजिब नहीं किया हुआ, जरूरी नहीं है। क्या फर्ज है मेरे ऊपर? हम तो हर चीज में पूछते ना ये फर्ज है क्या, जो फर्ज है वो भी नहीं देते। एहसान तो दूर की बात है, फर्ज तो था आधा देना, वो भी नहीं देते। तो दूसरे के साथ भलाई करना ना भूलो, और यही भलाई होगी कि उसका हक नहीं भी बनता, उससे ज्यादा दे दिया। अल्लाह अकबर। तो एक ये आदमियों के लिए भी है कि वो अल्लाह ताला ने जो उनको फजीलत दी है औरतों पे, उसकी बिना पर उनको चाहिए कि वो माफ कर दें, वो बड़ेपन का मुजाहिरा करें। ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे रिश्ते बाज दफा नहीं निभते, तो उसके अंदर रवैये क्या होने चाहिए वो समझाया जा रहा है कि कोई अच्छा वक्त गुजरा हुआ याद कर लो और उसकी बिना पे ही आगे अच्छा करो दूसरे के साथ। हमें कौन सी चीज याद आ रही होती है, जो लेटेस्ट लड़ाई होती है वो याद आ रही होती है। अब देख लें कि अगर ये काम करें तो मेरे ख्याल में कभी तलाके ही ना हो। तलाक की नौबत जो आती है वो आती ही तब है जिस वक्त कि इन प्यारे असूलों को हम भूल जाते हैं। इन अल्लाह बीमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसको देखने वाला है। तुम किसी के साथ एहसान का रवैया करते हो, किसी के साथ बुराई करते हो, कोई और प्लानिंग करते हो किसी के खिलाफ, इल्जाम तराशियां करके उसको फारिग करते हो, उसको ब्लेम करते हो कि उसने उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो ये तो देखें जो असूल बताए गए ये तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है जो हम सब करते हैं, और अल्लाह ताला देख रहा है उनको। जिंदगी एक दूसरे से अलग होने वाली है, बिल्कुल रास्ते अलग होने वाले हैं, तब भी क्या रवैया होना चाहिए, तब भी ये याद रखना अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो चीजें सही हो ही तब सकती हैं जब अल्लाह ताला के देखने का शऊर हो, जब ये याद रहे कि कोई है जो मुझे वॉच कर रहा है, कोई है जो इसका मुझे अजर देगा, मैं छीना झपटी ना करूं, मेरे साथ किसी का अच्छा किसी वक्त वक्त गुजरा था तो अब मैं ग्रेसफुली इस रिश्ते को तोड़ूं, जितना ज्यादा फजल कर सकते उतना करूं, ये एंड हो रहा है अच्छे तरीके से एंड करो ताकि बिटर मेमोरीज ना रहें। लेकिन उस किसी लड़की को कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है, अब रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन वो हमेशा जब भी याद करेगी अच्छी ही याद करेगी, अच्छा ही कहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पे काट खाने वाला जमाना आएगा, मोमिन भी अपने हाथों की चीज को दांतों से पकड़ लेगा और फजीलत और बुजुर्गी को भूल जाएगा। हालांकि अल्लाह का फरमान क्या है, आपस के फजल को ना भूलो। और फरमाया, बुरे हैं वो लोग जो एक मुसलमान की बेकसी और तंगदस्ती के वक्त उससे सस्ते दामों उसकी चीज खरीदते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बय से मना फरमाया, अगर तेरे पास भलाई हो तो अपने भाई को भी वो भलाई पहुंचा और उसकी हलाकत में हिस्सा ना ले। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना उसे रंजो गम पहुंचाए ना उसे भलाइयों से महरूम करे। तो ये बताया कि देखो, एक वक्त एक जमाना ऐसा आएगा कि इंसान अपनी हाथों की चीजों को दांतों में पकड़ लेगा कि मैंने नहीं किसी को देनी, और ये भूल जाएगा कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि फजल करना ना भूलो, एहसान करना ना भूलो, दूसरे के साथ एहसान का रवैया रखो। हम क्या करते हैं, एहसान जिताते हैं, एहसान करते नहीं है, जिताना कभी नहीं भूलते। हमारे हमने किसी पे किया होगा ना, वो कभी नहीं भूलते और उसको जिताते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ किसी ने एहसान किया हो तो उसको भूल जाते हैं और किसी के साथ एहसान करने को भूल जाते हैं। हम भी तो एहसान करें। और फिर देखें, फरमाया कि जो एक मुसलमान की बेकसी में उसकी तंगदस्ती के वक्त उसे सस्ती दामों चीज खरीदता है, यानी कि अब की मसलन कोई औरत बेवा हो गई, अपनी चीजें बेच रही है, अब वो बेचारी है, अब वो कहती है जो भी पैसे दे दो ठीक है, उसको तो जरूरत है। यहाँ कोई बेचारा इतनी मुसीबत में फंस गया, वो औने पौने अपनी चीजें बेचता है, किसी कर्ज में फंस गया है, किसी और इतनी बड़ी परेशानी में फंस गया, वो औने पौने कहता है बस ले जाए कोई चीज, उस वक्त उसकी जरूरत है ना, उस वक्त उसकी बेकसी है, तंगदस्ती है, तो हम कितने खुश होते हैं और बढ़ बढ़ के उससे चीजें लेते हैं। फिर हम नहीं ये कहते कि ये चीज तो मार्केट में इतने की है, तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारा घर या ये, इसकी ये तो प्राइस नहीं है। वो बेचारा मजबूर है ना उस वक्त कि वो इतने के बेचे, उसकी चीज यहाँ खराब हो रही है, वो खराब हो जाएगी अगर वो रखे छोड़ेगा, तो वो मजबूर है इस वक्त इतने पे बेचने में, और हम इतने खुश होके लेते हैं। हालांकि हमें पता है दूसरी जगहों के ऊपर ये चीज इतने की नहीं है, महंगी है, लेकिन हमें पता है कि इस वक्त ये बेबस है, मजबूर है, इसकी मजबूरी से फायदा उठाओ, नोच लो इसको। ऐसी बहस है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, हमारे में से कितने लोग ये जानते हैं। फरमाया, अगर तुम्हारे पास भलाई हो तो अपने भाई को भलाई पहुंचाओ, उसकी हलाकत में तो हिस्सा ना लो, उसको भलाइयों से महरूम तो ना करो, उसको रंजो गम तो ना पहुंचाओ। हजरत औन जो थे वो हदीसें बयान करते जाते थे, रोते जाते थे, यहां तक कि उनकी आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाती थी। फरमाते थे, मैं मालदारों की सोबत में बैठा बैठा और देखा कि हर वक्त उनके दिल रंजीता है, मलूल है, गमजदा है, क्योंकि जिधर नजर उठती है हर एक को अपने से अच्छे कपड़ों में और अच्छी खुशबुओं में और अच्छी सवारियों में देखता है। हाँ, मिसकीनों की महफिल में मैंने बड़ी राहत पाई। अब उनको तो चैन ही नहीं ना, जिसको माल से इतनी मोहब्बत होती है वो कहाँ किसी को देगा, निस्फ निस्फ दे दे तो बड़ी बात है, पूरा देना तो दूर की बात। तो जो जो फरमाया कि मालदारों में यही होता है कि हाँ बस वो हर वक्त तो दूसरे को देखते रहते हैं, उसे कुड़ते रहते हैं कि उसने तो मेरे से ज्यादा अच्छा पहन लिया, उसकी मेरे से ज्यादा अच्छी गाड़ी है, हाय मैं तो बस रंजीत, हर चाहे अपने पास कुछ हो भी लेकिन उसके पास मेरे से अच्छी हो गई, अब किस पे कितने गमजदा है, उसने हमारे से भी अच्छा घर बना लिया, अब कितना डिप्रेशन हो गया, सारा दिन डिप्रेशन में बैठे हैं। भी क्या वजह डिप्रेशन की, कि देखो उसने तो इतना अच्छा घर ले लिया, हमारे पास नहीं। ऐसे लोग फिर क्या किसी को देंगे जिनके अंदर माल की ऐसी हिरस हो, ऐसी मोहब्बत हो। फिर आगे बात की गई नमाज की, और नमाज की बात यहां पे क्यों की गई, इसलिए कि देखें पहले तकवा की बात आई है, अल्लाह के देखने की बात आई है, अल्लाह ताला के बाखबर होने की बात आई है। और कौन है जो इन चीजों को इन प्रिंसिपल्स को, इन रूल्स को अप्लाई कर सकता है जो अल्लाह को याद रखे। तलाक भी बड़ी ऐसी चीज है जिसके अंदर कितने अहकामात अभी तक आप पढ़ चुके हैं, ऐसे नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना। उसके अंदर अगर कोई अल्लाह का डर और उसको याद रखता होगा तो तभी वो इन कामों को करेगा। और अल्लाह याद ही नहीं है जिसको, वो कैसे ये इनको अप्लाई करेगा जिसको रब ना याद हो। और अल्लाह की याद कराने वाली सबसे बड़ी चीज कौन सी है? नमाज। नंबर 2 बात, यहाँ पे नमाज का जिक्र क्यों आया? तलाक जो है ना बड़ी इंसान के लिए बहुत भारी चीज होती है, किसी के लिए भी। देखिए ना, सारी पिछली जिंदगी काट के और वो जो सारी यादें हैं और सारा जो किसी के साथ वक्त गुजरा हुआ है, इसीलिए वो कहते हैं ना तलाक के बाद भी लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है, इंसान ट्रॉमेटाइज हो जाता है बाज दफा। तो उस वक्त क्या चीज है जो इंसान को दिलासा देती है? क्या चीज? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब कोई मसला होता था नमाज की तरफ भागते। असल में हमारी नमाजें ऐसी नहीं है ना, तो हमें पता ही नहीं नमाज कैसी होती है। तो इसलिए नमाज का जिक्र यहाँ पे है कि नमाज की तरफ आ जाओगे ना, नमाज तसल्ली देती है, नमाज टूटे दिलों को पे मरहम लगा देती है, अल्लाह की याद। तो हाफिजू अल सलावात, हिफाजत करो नमाज की तरफ आओ, इसकी हिफाजत करो। ये ना हो कि तलाक और इनके मसाइल में पढ़ के नमाज ही भूल जाओ। नमाज की हिफाजत और सलावात है, यानी तमाम नमाजों की हिफाजत, पांचों नमाजों की हिफाजत करो। और हिफाजत में क्या आता है? ये हिफाजत इंसान कैसे करता है? उसके वक्त की तो हिफाजत करनी है कि इंसान जो वक्त है नमाज का उसमें ही नमाज पढ़े। और हिफाजत में क्या आता है कि इंसान जो नमाज के जो शराइत है उन सबको पूरी करे। हिफाजत ना शुरू किस वक्त से होती है? अजान से। अजान हुई तो उसमें अजान के अल्फाज को रिपीट करना, जवाब देना, उसके बाद मसनून कलिमात हमें बताए गए हैं वो, उनसे अजान जब खत्म होती है वो अदा किए जाए, फिर तहारत की साथ वुजू का एहतमाम करके फिर नमाज के लिए सातिर लिबास पहना जाए, फिर किबले का एहतमाम किया जाए। ये सारी नमाज को हम हिफाजत कर रहे हैं ना नमाज की। देखिए ना, नमाज है एक चीज है, मसलन उसकी हिफाजत कैसे होगी? वो तो वरना अगर आपने वजू ही नहीं किया, या आपका सातर लिबास ही नहीं है, या तहारत ही नहीं है, तो या वक्त ही नहीं है वो नमाज का, तो नमाज तो जाया हो गई। फिर किबला रुख होना, ये भी नमाज की हिफाजत है, क्योंकि अब हम नमाज को अपनी सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हमारी नमाज कबूल हो जाए। फिर इसके बाद नमाज के दौरान दिल में जो सोचें आती हैं उनसे भी अपने दिल की हिफाजत करना, दिल को पाक करना, ये भी नमाज की हिफाजत है। तलावत के दौरान सही तजवीद के साथ अल्फाज अदा करना, ये भी नमाज की हिफाजत है। अगर नमाज में कोई कमी बेशी रह गई है तो सजदे सहव करना, ये भी नमाज की हिफाजत है। फिर जिन चीजों से नमाज रोकती है, जो नमाज सिखाती है, उन चीजों को याद रखना, उन चीजों को अप्लाई करना, ये भी नमाज की हिफाजत है, क्योंकि नमाज बेशर्मी बेहयाई से रोकती है। नमाज में इंसान सातिर लिबास पहनता है, तो सातिर लिबास अपनाना, ये भी नमाज की हिफाजत। नमाज ने सिखाया हमें, नमाज ने हमें वक्त की पाबंदी सिखाई है, नमाज ने हमें पाक साफ रहना सिखाया है। तो नमाज एक तरबियत कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, उसको याद रखना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये भी नमाज की हिफाजत है। जो रवैये नमाज हमें सिखाती है, ये भी नमाज की हिफाजत है। तो नमाज की हिफाजत सारी चीजों के अंदर ही, इन सब में ये नमाज की हिफाजत ही आ जाती है। फिर औकात का तो आपने किया, लेकिन उसके बाद अगर नमाज के अंदर ही आपका दिमाग नहीं हाजिर है, नमाज में ही आपका दिमाग भटक रहा है, तो नमाज की हिफाजत तो ना हुई ना। फिर आप देखें, हाफिजू का लफ्ज आया, ये नहीं कहा गया सिर्फ कि पढ़ लो नमाज, हिफाजत करो, यानी ध्यान रखना चाहिए इंसान को कि मैं नमाज, मेरी नमाज का वक्त, मेरी ये ऐसे नहीं, उसे गाफिल नहीं हो सकता, क्योंकि हिफाजत इंसान ना कीमती चीज की करता है। हिफाजत में आप बाहर के दुश्मनों से भी हिफाजत करते हैं, अंदर भी आप, मसलन आप अपने गोल्ड की हिफाजत करते हैं, आप चोर से भी हिफाजत करते हैं, लेकिन खुद भी आप ये नहीं करते कि उसको तोड़ दें, उसको जला दें, ऐसे नहीं करते। तो बाहर के दुश्मन से भी, शैतान से भी, और अपने वसवास से भी ना खुद नमाज को खराब करना है ना बाहर, और बाहर में ये भी आ सकता है कि आप औकात की भी हिफाजत करें, और जब नमाज के अंदर दाखिल हो गए तब भी नमाज की हिफाजत। और सलाते वुस्ता खास तौर पे उसकी हिफाजत का हुक्म यहाँ पे दिया गया। सलाते वुस्ता कौन सी है? दरमियानी नमाज। अगर देखा जाए तो दरमियानी नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी पता चलती है कि सलाते वुस्ता नमाज असर है। और वैसे भी आप देखें पूरे दिन के अंदर दो ऊपर नमाजें फजर और जुहर, और दो नीचे नमाजें मगरिब और ईशा, और दरमियानी नमाज असर की बनती है। तो इसलिए नमाज असर जो सेंट्रल नमाज है, और असर की नमाज की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम भी खाई है, दो नमाजों की कसम खाई है, फजर की और असर की। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होंगी ये नमाजें, सोचें। एक दफा जंगे आजाब के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज छूट गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी थी कि अल्लाह ताला इन काफिरों के घरों और कब्रों को आग से भर दे जिन्होंने हमें हमारी नमाज से रोक दिया, हमारी नमाज इनकी वजह से फौत हो गई। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को भी बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन नमाज की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी ऐसे लोगों को। तो सलातुल असर की एक खास अहमियत है, और उसकी अहमियत हमें इस इन अहदीस से भी पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दो ठंडी नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। और वो दो ठंडी नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी बताई? कबला तुलुए शम्स, सूरज के निकलने से पहले, व कबला गुरूब शम्स, और सूरज के गुरूब होने से पहले, यानी फजर और असर। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ दी गोया उसके घर वाले और माल सब बर्बाद हो गए। इतनी बड़ी बात है फजर की नमाज का छूट जाना, आसान नहीं है। और अगर बाजारों में शॉपिंग करते हुए छूट गई, अगर शादियों की तैयारियों में छूट गई या और इसमें छूट गई, तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मेकअप किया हुआ है तो फिर अब वजू नहीं हो सकता, चलो छोड़ दो नमाज। या जॉब की वजह से छूट रही है नमाज, ये तो ये कितनी इंपॉर्टेंट नमाज है जो अगर छूट गई तो कितना बड़ा नुकसान इंसान का होता है। और एक बहुत ही प्यारी हदीस है, बहुत खूबसूरत हदीस, वो तो जरूर एक आप सुने और देखें कि कितनी अहमियत है इस नमाज की। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने रब को इस तरह देखोगे जैसे तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो, यानी 14वीं रात का चांद फुल मून होता है ना, सब देखते हैं। कोई ऐसे नहीं करता कि तुम आगे से हटो मैं नहीं देख सकता, कोई कहता मैंने देखना है तो तुम ना आगे आओ, सब एक ही वक्त में सब देख सकते हैं। तो और देखने में तुम्हारी आंखें नहीं चुधियाएंगी। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, कैसा कि मतलब अपने रब को ऐसे देखना चाहते हो, तो चाहिए कि अगर तुम में इस्तताअत हो तो तुम ना मगलूब हो फजर की नमाज से और असर की नमाज से। यानी फिर तुम मगलूब ना हो, यानी तुम फजर की नमाज और असर की नमाज कभी मिस ना करना अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें रब का दीदार हो, इनकी हिफाजत करना। ये है वो दो ठंडी नमाजें, ठीक है? तो जिसको शौक है अल्लाह ताला के दीदार का, वो इन नमाजों को कभी मिस ना करे। वकूमू लिल्लाहि कानितीन, और खड़े हो अल्लाह के आगे फरमा बरदार बन के। अल्लाह ताला के आगे कुनूत, मैंने बताया ना, फरमा बरदारी को भी कहते हैं, खुशू को भी कहते हैं, इखलास को भी कहते हैं, दवाम को भी कहते हैं, आजी। नमाज में दवाम यानी हमेशगी अल्लाह के आगे खड़े होने में हमेशगी हो, ऐसे नहीं कि कभी एक नमाज पढ़ी तो दूसरी नहीं पढ़ी, पांच में से चार पढ़ लेती हूं लेकिन फजर बड़ी मुश्किल लगती है, नहीं ईशा बड़ी लेट होती है तो मैं नहीं पढ़ सकती, नहीं, कानित दवाम होना चाहिए। और फिर अल्लाह के सामने खड़े हो तो कूमू लिल्ला, अल्लाह के आगे खड़े हो तो ये समझ के खड़े हो कि अल्लाह के आगे खड़े हुए हो, अल्लाह के लिए खड़े हो। यानी इंसान फिर वाकई जहन में ये हो कि मैं कितनी बड़ी हस्ती के आगे खड़ी हूं। देखिए ना, दुनिया के किसी बादशाह के आगे इंसान खड़ा हो तो कैसे आजी से खड़ा होता है, कैसे उसकी नजरें होती हैं। और शायद हम तो कभी खड़े भी नहीं हुए तो इसलिए इतना पता नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ी हस्ती उसके सामने जो रब्बुल आलमीन है, जहानों का रब है, मैं उसके आगे खड़ी हो रही हूं, तो मुझे कैसे खड़े होना चाहिए, मेरी नजरें कहाँ होनी चाहिए, मेरी लिबास कैसे होना चाहिए, मेरी हरकत कैसी होनी चाहिए नमाज में। क्योंकि हदीस में है कि नमाज इंसान जब कयाम करता है ना नमाज में, तो वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है और वो अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है। यानी जैसे चुपके चुपके बातें करना होता है ना सरगोशी, जैसे हम सरगोशी करते कानों में बातें करना, यानी अल्लाह ताला से वो इतना करीब होता है कि सरगोशियां कर रहा होता है अल्लाह से, चुपके चुपके बात कर रहा होता है। तो वो अल्लाह के सामने खड़ा है, यानी अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो जाते हैं। जब वो नमाज में अल्लाह अकबर करा आपने, अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो उसमें सोचो कि तुम किसके आगे खड़े हो, कूमू लिल्लाह, अल्लाह के आगे खड़े हुए हो। तो ऐसे खड़े हो कि पता चलना चाहिए कि किस हस्ती के आगे ये खड़ा हुआ। ये नहीं कि कभी बाल कुजा रहे हैं, कभी सोटे सही हो रहे हैं, कभी कुछ है। हमारी तो ऐसी ही नमाजें हैं। अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह ताला हमें खुशू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मतलब मैं अपनी भी बात करती हूँ, हमारी नमाजें कोई ऐसी नहीं है कि जो वाकई इस तरह की हो। कूमू लिल्लाही कानितीन, फरमा बरदार होके, उसमें सकूत होना चाहिए। कुनूत में सकूत भी आता है, सुभान अल्लाह। तो जब इंसान को ये पता हो अल्लाह ताला मुझे इस वक्त देख रहा है, मैं उसके आगे खड़ी हूं, तो क्या एक इंसान की बॉडी के ऊपर एक असर नहीं होना चाहिए, एक पता नहीं चलना चाहिए कि यह वाकई ये किसी बड़े के आगे खड़ा। या ऐसे ही होना चाहिए जैसे हिलते रहते हैं आगे पीछे, बाज दफा लोग होते रहते हैं नमाज में हरकत कर रहे हैं ऐसे, वो पता नहीं पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए हरकत करते रहते हैं, या कभी किधर ध्यान है कभी किधर ध्यान है, जैसे कोई गुलाम आका के आगे खड़ा हुआ और झुका होता है। इस तरह इंसान के पोस्चर से भी पता चलना चाहिए और इंसान के जो ख्यालात हैं उससे भी पता चलना चाहिए कि मैं किसके आगे खड़ी हूं, क्योंकि ख्यालात तक अल्लाह की रसाई है, कोई और नहीं देख सकता। फिर फरमाया इन खिफ तुम, फिर अगर तुम डरो, को तुम्हें कोई खौफ हो, मसलन को कोई जंग है या कोई ऐसी चीज आ गई हो रही है, फरिजालन और रुकबाना, तो चलते चलते भी पढ़ लो या सवार होके, मसलन सवारी ऐसी है कि जो खड़ी नहीं हो सकती, चलो वहां पे खौफ नहीं होता, लेकिन आप जहाज में होते वहां पे भी पढ़नी है। अच्छा बाज लोग ना जहाज में बैठते समझते हैं नमाज नहीं पढ़नी, यहाँ पे जहाज में नहीं होती नमाज, वो सो ही जाते हैं। नहीं तो हमें तो टाइम का ही नहीं पता चलता। तो भाई टाइम, जिस जमाने में घड़ियां नहीं होती थी उस वक्त लोग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे नमाज, कैसे पढ़ते थे, देखते थे ना बाहर के क्या है तो उससे पढ़ते थे ना। तो हम अपने वो टीवी लगा के बैठ जाते हैं उसके ऊपर मूवियों पे मूवियां, या फिर आप सो ही जाते, वो सोए ही हुए हैं, वो उठना तब है जिस वक्त जहाज उतरेगा। तो बीच में सारी नमाजें कहां गई, 8-8, 10-10 घंटे की फ्लाइट्स होती हैं, चलो घंटे की फ्लाइट हो उसमें तो नहीं, इतनी लंबी फ्लाइट्स में एक नमाज का कोई होश ही नहीं है। कैसी बात है, हिफाजत करने को कहा गया नमाज की, तो सवारी में नहीं पढ़ सकते, जिस तरह से भी जैसे भी पढ़े, बैठ के चाहे पढ़े, लेकिन पढ़नी है, सवार होके यहां पढ़े, सवारी पे भी पढ़ सकते हैं यहां पे बताया गया। और फिर इसी तरह अगर ऐसा ही वो कोई मौका, अल्लाह ताला माफ करे, अब बहुत से मौकों को इंसान सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आज तो पता चलता है कि हर चीज ही हो सकती है। तो इन खिफ तुम, अगर खौफ हो तुमको, ऐसा कोई भगदड़ मच गई है, लोग दौड़ रहे हैं, नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, जा रहा है, नहीं कहीं पे भी जगह नहीं कि इंसान, तो चलते चलते ही पढ़ ले, इतनी पैनिक का अगर कोई वक्त आ गया, अल्लाह ताला माफ करे, तो खौफ में भी नमाज को नहीं छोड़ सकते। फैदा अमिन तुम, लेकिन फिर जब अमन में आ जाओ तुम, तो फ़ज़कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का। कि किस चीज को कहा जा रहा है, अल्लाह का जिक्र करो, नमाज के बारे में कहा जा रहा है कि यानी नमाज पढ़ो फिर, और वैसे भी अल्लाह का जिक्र करो तुम, तो यानी दोनों चीजें इसमें आ गई, नमाज को भी अल्लाह का जिक्र कहा गया। यानी इसका मतलब यह है कि जिक्र असल में नमाज क्या है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद। जिक्र करना क्या होता है, याद करना किसी को, तो अगर याद ही ना आई नमाज में भी अल्लाह की, तो फिर क्या नमाज है वो। कि नमाज में भी अगर अल्लाह नहीं याद आता और बाकी चीजें याद रहती हैं, तो सोचें फिर वो कैसी नमाजें हैं। और फिर कैसे जिक्र करो, कमा अल्लामकुम मा लम तकुनु तालमून, जैसे तुम्हें सिखाया उसने, किसने, अल्लाह ताला ने सिखाया, किसको, अल्लाह ताला ने हमें कैसे सिखाया, नबी अलैहिस्सलाम को सिखा के जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको नमाज का तरीका सिखाया, क्योंकि नमाज का तरीका तो कुरान में है ही नहीं। अब जो लोग हदीस को नहीं मानते तो फिर ले आए नमाजें किधर से पढ़ेंगे, रकतों का जिक्र नहीं है यहाँ पे, तरीके का जिक्र नहीं है, तो वो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहि सलाम ने सिखाया। इसी तरह नमाज के एग्जैक्ट औकात, ठीक है एक वेग सा तो है कुरान में, लेकिन एग्जैक्ट औकात भी जिब्राइल अलैहि सलाम ने, दो दफा आए थे, एक दिन आए तो अव्वल जो वक्त है ना, बिल्कुल इब्तदाई वक्त नमाज का, उसमें नमाज पढ़ाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नमाजें पढ़ाई, और अगले दिन में जो खत्म होने का बिल्कुल जो आखिरी वक्त है ना नमाजों का, उसमें नमाज पढ़ाई, बताने के लिए कि स्टार्ट यहां से होगी और यहां पे इस नमाज का एंड होगा। सुभान अल्लाह, तो ये भी अल्लाह की तरफ से आया है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे पढ़ो। इसी तरह नमाज का तरीका भी वही होना चाहिए, जो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हम वैसे पढ़ने के लिए कोशिश करें। और क्या ये मुश्किल है कोई? आप एक किताब है नमाज नबी दारुसलाम की, अगर आपके घर में नहीं है तो हर घर में होनी चाहिए, उसमें नमाज के तमाम मसाइल हैं, बहुत आसान है समझने, तो आप वो जरूर किताब लें और उससे नमाज का तरीका सीखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें फिर, जैसे अल्लाह ने सिखाया। इसी तरह फज़कुरुल्लाह का मतलब क्या है? याद करो अल्लाह को, यानी अल्लाह की याद करनी है जैसे अल्लाह ने सिखा दी है, जो तुम नहीं जानते थे पहले, आपको पहले नहीं आता था ना, नमाज तो आती ही नहीं थी, और भी जिक्र के कई तरीके नहीं, इंसान को खुद से नहीं वो बना सकता। यहां से ये पता चलता है कमा अल्लाह मकुम, जैसे तुमको सिखाया, अब जिक्र के कोई तरीके आप निकाले कि मैं आज आपको अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह इसी उस पे, लेकिन मसलन कोई भी आपको एक दिन खड़ा होके कोई कहने शुरू जाए, अब आपने इस तरह से जिक्र किया करना अल्लाहू 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 करके, तो वो शुरू हो जाएंगे आप पहले देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह से सिखाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें सिखाया ना, हमने यहां पे बता दिया क्या कमा अल्लामकुम, जैसे तुमको सिखाया, उससे बाहर नहीं आप जिक्र करें। आज लोगों ने अपने अपने तरीके बना लिए हैं, जिस तरह दिल चाहता है, जो ये करना पढ़ना शुरू कर दो, फलाना पढ़ना शुरू कर दो, दुरूद तंजीना, दुरूद ताज है, दुरूद लकी है, फलां है, फलां, खुद ही बना बना के चीजें, तो वो जो अल्लाह ताला ने सिखाया वो इनाफ नहीं है तुम्हारे लिए? और अल्लाह हू की तस्बीह कहां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में अल्लाह हू की तस्बीह नहीं की, आज देख ले अल्लाह हू की तस्बीह, अल्लाह हू करते रहो जब तक कि तुम्हारा दिल ना बोलने लगे अल्लाह हू, ये हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह है, सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, इस तरह की तो है, कि अल्लाह हू की तस्बीह कहां। इसी तरह और भी जितनी तस्बीहात हैं, खुदा के लिए कभी देखा करें कि ये क्या मसनून जिक्र भी है कि नहीं, कोई मसनून ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये जिक्र किया था या सहाबा को कभी सिखाया था या लोगों ने खुद ही बना लिया? अल्लाह ताला देखिए कुरान पाक में ये इस चीज की दलील है कि आप सिर्फ वो जिक्र कर सकते हैं जो अल्लाह ने सिखाया है, और नहीं कर सकते। जो जिसका जिक्र करना है वो वही बताएगा ना कैसे मेरा जिक्र करो, या खुद ही बना लेंगे, तो सिर्फ उसको फॉलो करो। और इससे हदीस की अहमियत और मुनकिरीन हदीस का इनकार भी हमें पता चलता है, वो तो नमाज नहीं पढ़ सकते हदीस के बगैर, तो और क्या करेंगे। वल्लदीना युतवफ्फौना मिनकुम, और वो लोग जो फौत हो जाएं तुम में से, वयदुरूना अज़्वाजन, और वो छोड़ जाएं बीवियां। अब ये आयत जो है ये मनसूख है, आयत नासिख और मनसूख का आपको बताया था ना, तो ये आयत मनसूख है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब अभी विरासत के अहकाम नहीं आए थे, जो कि सूरह निसा में आ चुके हैं। जब वो अहकाम आ गए तो औरतें जो बेवा होंगी उनको विरासत में हिस्सा दिया गया। उससे पहले जब वो अहकाम नहीं थे तो हर एक वसीयत करता था, मसलन मैं वसीयत करके जाता था उसको इतना दे देना, उसको इतना देना। जब विरासत के अहकाम आ गए तो मैंने आपको बताया था फिर अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए वारसों के हिस्से। अब कोई वारसों के लिए खुद नहीं वसीयत करेगा कि मैं बताता हूं कि किस तरह से करना है, नहीं ये नहीं अब हो सकता। तो उस जमाने में जिस वक्त अभी विरासत का हुक्म नहीं आया था तो कहा गया आदमियों को कि तुम क्या करो, तो वसीयत ले अजवाजिंग, तो वसीयत करना है अपनी बीवियों के लिए, कि आदमी मरने से पहले हर आदमी अपनी औरत के लिए वसीयत कर जाए कि जब मैं मर जाऊं तो क्या, मतान इलल हौली गैरा इखराज, तो फायदा पहुंचाना एक साल तक बगैर निकालने, कि एक साल तक इनको घर में रहने देना, इनको निकालना ना घरों से, और इनको मतान का मतलब क्या, नान नफका, ये खाना पीना पहनना इनका ये दूसरे वारसों के जिम्मे होगा, जो आदमी के घर वाले हैं उनके जिम्मे होगा, उसके भाई हैं या बेटे हैं उनके जिम्मे होगा, कि ये बेवा को ये ना हो कि शौहर फौत हुआ तो घर से निकाल के कहेंगे इसको अब इसका कोई हक नहीं है, नहीं उसको रहने दो एक साल तक। अब लेकिन मैंने आपको बताया जब विरासत का हुक्म आ गया तो अब 1 साल तक रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि औरत के पास अब विरासत है, वो जहां पे भी जा सकती है, अब अपने लिए इंतजाम कर सकती है, जब उसकी इद्दत खत्म हो जाए फिर 1 साल तक उसको नहीं जरूरत। फइन खरजना, फिर अगर वो निकल जाए यानी इसी दौरान 1 साल के दौरान अगर वो निकल जाए, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, फीमा फाल नफी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, के जो भी वो अपने नफ्सों के लिए फैसला करें मारूफ तरीके से, वो 1 साल से पहले 6 महीने बाद जाना चाहती हैं वो चली जाए, वो फिर नहीं, तुम्हारी कोई इसमें पकड़ नहीं है, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो जाके कहीं और शादी कर लेती, वो उसका फिर नान नफके का जिम्मेदार है, तुमने ही नहीं उसको फिर देना। वल्लाहु अजीज उन हकीम, अल्लाह ताला जबरदस्त है, गालिब है, हिकमत वाला है, अल्लाह के सारे अहकामात हिकमत पे मबनी है। वलिल मुतल्लकाती मताउम बिल मारूफ, और मुतल्लका औरतों के लिए फायदा पहुंचाना है भले तरीके से। आपको जैसे बताया गया जितनी तलाक याफ्ता औरतें हैं, तमाम तलाक याफ्ता औरतों की बात हो रही, यानी रुखसती हुई है तब भी उसको फायदा पहुंचाना है, मेहर दिया है उसको, ये रुखसती नहीं हुई तब भी आपने देख लिया, या तो मताए तलाक देना यानी तोहफे तहाइफ दे के भेजना है, या फिर निस्फ मेहर दे देना, कुछ ना कुछ देना है मुतलका। ये अमूमी एक जनरल रूल बताया गया, ठीक है, कि जिसको भी तलाक देते हो अगर उससे फायदा उठाया है, अगर उससे साथ रुखसती हुई है तब भी तुम्हारे साथ रही है, तुमने उससे फायदा तो उठाया है, हो सकता है उससे औलाद भी हो, तो उसको कुछ ना कुछ दे के रुखसत करो। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के ऊपर ना हक है, यानी हक है कि मुत्तकी आदमी ये काम करे, ये उसकी जिम्मेदारी है, जो अल्लाह से डरने वाला है ना उसको उसको फिर खुद ही एहसास होता है कि मैंने देखो ये किया है। आप असल मारूफ तरीके से जो भी बने भले तरीके से जो भी जितना भी मैं कर सकता हूँ, ये जितना भी एक जो उस जमाने या उस वक्त या जिस जिस तरह से भी वो रह रहे हैं जिस जगह पे, उसके मुताबिक एक भला तरीका, सभी कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये ठीक इसने किया, उसके मुताबिक मैं इसको कुछ दे के भेजू, जो हैसियत है उसके मुताबिक दे दू, तो मारूफ तरीके में ये सब चीजें आ जाती। इसके अंदर लेकिन ये नहीं है कि पूरी जिंदगी आदमी देता रहेगा, ये नहीं है। हाँ ये वो है कि जब वो जाने लगी है उस वक्त दे रहा है, या इद्दत के अंदर आपको पता है कि रजई तलाक है तो इद्दत के अंदर तो वो उसका सारा नान नफका देगा। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून, इस तरह खोल खोल के अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए। लेकिन कितनी वाजी आयात है, कितनी ये मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझ ना आए, कितनी आसान चीज है समझने की, फिर भी अगर कोई इस बात को ना समझे और इसको ये इन बातों को ना माने और ये कहे कि हमें तो समझ ही नहीं आती या हमें तो पता ही नहीं, तो ये अपनी गलती है। तो अल्लाह ताला इस तरह बयान करता है तुम्हारे लिए आयात, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो, ताकि तुम समझो इस बात को कि अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे लिए कितने बेनिफिशियल अहकामात दिए हैं। इसमें इंसान वाकई अकल से काम लेगा तो उसको ये बात समझ आएगी कि अल्लाह ताला की जितने भी अहकामात हैं उनमें इंसान के लिए खुद के लिए भलाई है, इंसान का खुद का फायदा है, तो इन अहकामात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमें भी ये अहकामात समझने की तौफीक अता फरमाए, जिसमें सबके हकूक प्रोटेक्ट किए गए हैं, अल्लाह सब का रब है, चाहे मर्द है चाहे औरत है चाहे बच्चे हैं, उसने किसी की साइड नहीं ली है, मगर जो सबके साथ इंसाफ जिसमें है वो वाले अहकामात दिए हैं। अब आप ये करेंगे, एक काम आप करेंगे, और वो ये कि आप लोग जरा, तो आपके लिए आसानी के लिए मैं ये करा रही हूं, आप लोग जरा अपनी नोटबुक्स में 4 कॉलम बना लें, यानी अपने पेज में 3 लाइनें लगाएं, ठीक है, 4 कॉलम हो गए। पहले कॉलम में आप ऊपर लिखिए स्टेटस, स्टेटस वैसे ही मैं कह रही हूं आप कुछ भी लिख सकते हैं बाद में, अच्छा। दूसरे में लिखिए मेहर, तीसरे में लिखिए रुखसती, और चौथे में लिखे हैं क्या मिलेगा, यानी क्या मिलेगा या फायदा या ना नफका, कुछ भी लिख, ना नफका तो नहीं लिखे, क्या क्या उसको मिलेगा, मतलब इजी करने के लिए आपको, ताकि आपके लिए ये सारी गड़मड़ ना हो जाए। तो सबसे पहले नंबर 1, ये आपने ऊपर हेडिंग्स दे दी, चारों कॉलम्स के ऊपर ये हेडिंग आपने लगा दी, अब आप नीचे लिखें, नंबर वन तलाक हुई है, ये पहले कॉलम में लिखें, दूसरे कॉलम में लिखें मेहर मुकरर नहीं हुआ, तीसरे में लिखें रुख्सती नहीं हुई। अब क्या मिलेगा इसमें, आप लिखें मुताए तलाक, जो हमने लिखा है ना कि गिफ्ट्स वगैरह कोई भी मुता दिया जाएगा। अच्छा नंबर टू अब लिखें, नंबर टू लिखें उसके नीचे जिसमें स्टेटस आपने लिखा था ना कि तलाक हो गई, दूसरे कॉलम में लिखें जिसमें मेहर मुकर मेहर लिखा हुआ था उसमें लिखें मेहर मुकरर हुआ, जिस कॉलम में रुख्सती लिखा हुआ था उसमें लिखें रुख्सती नहीं हुई, और क्या मिलेगा हाफ मेहर। अब तीसरा नंबर सिनेरियो क्या है, तलाक हुई, मेहर मुकरर नहीं हुआ, रुख्सती हुई, मेहर मिसल मिलेगा। मेहर मिसल क्या है, अब ये देखें यहाँ पे तलाक हो गई, मेहर भी मुकरर हुआ है, रुख्सती भी हो गई है। अब आज तो हमने ये पढ़े हैं ना रुख्सती नहीं हुई लेकिन रुख्सती भी हो गई है, तो अब क्या मिलेगा मेहरे मिसल मिलेगा। मेहरे मिसल क्या होता है, मेहरे मिसल वो मेहर होता है जो कि औरत के खानदान वाले दूसरी औरतों को मिलता है, मसलन उसकी बहनों को कितना मिला, उसकी खाला, उसकी फूफी, या उसकी माँ, या इन इन या उसकी कजन्स को कितना रखा जा रहा है मेहर, वो मेहरे मिसल यानी उनका एक खानदानी जो मेहर है वो। अच्छा तीसरा आप लिखें तलाक हो गई, मेहर मुकरर हुआ, रुख्सती हुई, पूरा मेहर मिलेगा। यानी ये जो आम हालात में होता है कि तलाक हो गई है, रुख्सती भी हो गई किसी भी शादीशुदा औरत को, मेहर तो मुकरर हो ही गया था उस वक्त, तो पूरा मेहर मिलेगा। अच्छा अब पांचवी चीज लिखें, स्टेटस में बेवा हुई, मेहर मुकरर हुआ, रुख्सती नहीं हुई, तो पूरा मेहर मिलेगा। ठीक है अच्छा इसी तरह ये एक टेबल आपका हो गया, दूसरा एक और टेबल बनाएं जो इद्दत का है, ताकि आपको उसके लिए भी बार बार फिर नोट्स में पूरा देखना नहीं पड़े। एक तरफ लिखें स्टेटस, एक तरफ लिखें इद्दत, मुद्दत ए इद्दत, या इद्दत ही सिर्फ लिख लें। नंबर वन लिखें खुला वाली, पहले दो कॉलम बस बनाएंगे आप, एक में स्टेटस और एक में इद्दत लिखें। स्टेटस क्या है नंबर वन, खुला वाली, इद्दत उसकी कितनी, एक माह। नंबर टू तलाक वाली औरत, ब्रैकेट में लिख लें जिसको हैज आता हो, तो तीन हैज है उसके। फिर नंबर थ्री बेवा की इद्दत, बेवा इद्दत नहीं लिखें, बेवा औरत उसकी, फिर अगले कॉलम में इद्दत में लिखें 4 माह 10 दिन। फिर हामिला, तलाक याफ्ता या बेवा, ब्रैकेट में लिखें वजाए हमल उसकी इद्दत है। फिर इस तरह तलाक वाली जिसको हैज नहीं आता, ब्रैकेट में लिख लें जिसको हैज नहीं आता। यानी मैंने आपको बताया था कि मैं तो इतनी उधेड़ उम्र हो चुकी है, मेनोपॉज हो चुका उसको, तो अब उसको हैज नहीं आता या फिर अभी हैज शुरू नहीं हुआ था, तो उसकी इद्दत 3 महीने। ठीक है अच्छा एक और चीज मैं जो यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये आपका तो टेबल तैयार है। हाँ जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ी सी बात हुई थी इसके ऊपर कि मैंने आप लोगों को इंटरफेरेंस की बात बताई थी, तो किसी सिस्टर ने ये थोड़ा सा लिखा कि नहीं जगहों पे, बहुत जगहों के ऊपर औरतों का भी कसूर होता है और ऐसे होता है। तो देखें बात यह है कि जो ये पिछले लेक्चर में ना तलाक के हवाले से मैं आप लोगों को बता रही थी कि वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जुल्म दोनों तरफ से ही हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि वो जो भी बहुएं होती हैं वो हमेशा दूध धुली होती हैं और हमेशा जालिम ससुराली होते हैं, ऐसा नहीं है। जाहिर है कहीं पे भी कोई भी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें खुदा का खौफ नहीं है और वो नाइंसाफियां करते हैं, वो दोनों तरफ हो सकते हैं, मगर जो बात जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हो ना उसको समझे, और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि मैं कोई अदालत नहीं लगा रही कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है, तो उसकी तरह, क्योंकि ये एक जनरल बात हो रही है ना, एक्सेप्शनल केसेस तो बहुत से हो सकते हैं, बहुत सारी बातें सुन, जैसे यहाँ पे औरतों को कभी आधा मेहर दिलवाया गया, कभी मता तलाक दिलाया गया, तो बाज दफा औरतें भी तो जालिम हो सकती हैं, आदमी बेचारे का कोई कसूर नहीं है, तो उसके ऊपर क्यों? तो एक्सेप्शनल केसेस तो हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल जब बात की जाती है, चूंकि मेरे पास इतने ज्यादा केसेस आते हैं इस किस्म की चीजों के, तो एक मैं अदालत लगा के नहीं बैठी हुई यहाँ पे, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि तलाक की बाज दफा ये वजूहात, बल्कि बहुत दफा ये वजूहात सामने आती हैं कि इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेरेंस दोनों तरफ से ही बुरी है, और मैंने ये बताया था कि दोनों तरफ से बुरी है, मगर ज्यादा चूंकि जिस घर में औरत रह रही होती वहीं पे जब ससुराल के साथ रह रही थी तो उनकी इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाती है, बाकी बाहर वालों की इसलिए नहीं कि वो घर में रहते नहीं है तो इतना ज्यादा उनकी नहीं हो पाते, वो तो दोनों तरफ से बुरी। लेकिन यहां पर अगर कोई सास है या नंद है तो वो अपने रवैयों को देखें, क्योंकि उनके रवैयों की वजह से घर ब्रेक हो सकता है। अब जहां तक बहू का रवैया, उसकी वजह से किसी का घर नहीं ब्रेक होगा, लेकिन इसकी वजह से तलाक हो सकती है। ये सिर्फ कहने का मकसद है कि उसके अंदर हम हमारे ये देखें, जो भी आज बहू है ना उसको भी एक दिन सास बनना है, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए कोई एक को एक थप्पा नहीं हम लगा सकते कि वो ही बुरा है, या जो आज भाभी है वो नंद भी है, नंद है तो भाभी भी है, तो वो भी नहीं कह सकते कि ये ही बुरी है। तो जो जिस जगह पर हम हैं ना, तो हम उसमें देखें कि हम अपने भाई या बेटे, हम उसके कभी भी कान ना भरें, अगर वो कोई शिकायत लेकर भी आए अपनी बीवी के बारे में तो हमेशा उसको उसकी तरफ से खुशगुमान रखने की कोशिश करें, बदजन ना करें कि वो कोई शिकायत लेकर आए दो हम अपनी भी डाल दें कि हाँ, ऐसे ही है और मेरा मैं भी ऐसे ही समझती हूँ, तो इस तरह ना करें, सिर्फ ये बात कहने की है, बाकी ये किसी की फेवर नहीं है, और ना ही ये है कि किसी कोई एक जालिम हो गया और एक मजलूम हो गया, ये भी कोई मैंने वर्डिक्ट नहीं दिया, ठीक है? तो अगर किसी और के भी जहन में ऐसी बात हो तो क्लियर होनी चाहिए।